जब तक आप तैयार नहीं होंगे आपके ऊपर कानून असर नहीं करेगा। किताबों की किताबें कानून बनाने से और डंडे चलाने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इस वक्त बात यह है, आप जो चेंज ला सकती हैं, आप जो तब्दीली ला सकती हैं, आप लाइए। जिस पार्टी को आप समझती हैं कि ये इस्लाम लेकर आएगी, आप उसको वोट दीजिए। मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया, आपके सामने है, इनका क्लेम है। ये क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, मैं इनकी स्ट्रेटेजीज नहीं जानती, बट इनका क्लेम है कि हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। विल यू वोट देम? जैसे आप सोच रही हैं, हर औरत ऐसे ही सोचती है, इसलिए उसका पहला ख्याल ये आता है कि शटल कॉक ना पहना दें कहीं। हाँ, तालिबान इसलिए बुरे लगते हैं सबको, इसलिए कि वो एक अलग एक्सट्रीम। मुझे नहीं पता तालिबान की जो तस्वीर हमें दिखाई गई वो रियलिटी नहीं थी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको समझ आएगी, जो पिक्चर हमें दिखाई गई तालिबान की, असल में वो पिक्चर तालिबान की भी ओरिजिनल तालिबान की थी नहीं। एक्सट्रीमिज्म वक्त के साथ साथ इतना बड़ा कि जिसमें बहुत से मसले इतने बड़े कि इंसान डिसेंसिटाइज होते चले गए हैं। लोगों को अब चीजें बुरी ही नहीं लगती हैं, बिल्कुल जैसे न्यूडिटी हमें बुरी नहीं लगती। फैशन के नाम के ऊपर सतर का खुल जाना हमें बुरा नहीं लगता। सतर का खुल जाना तो बहुत मामूली सी बात है। आप कहेंगी सतर खुल जाना, क्या कुछ नहीं खुल गया? फैशन के नाम पे खुला है ना, मगर हम सब एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इस चीज को समझें, ये चीज आपके और मेरे लिए इस वक्त जितना आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है उतना ही मेरे और आपके कंट्रोल में भी है। अल्लाह ने आपसे और मुझसे ये नहीं पूछना कि पाकिस्तान पर इस्लाम नाफिज करके आई हो या नहीं। अल्लाह मुझसे क्या पूछेगा? अपने 5 फुट के जिस्म पर और अपनी औलाद को कितना इस्लाम की तरह, अपने 5 फुट पर जिस्म पर कितना अप्लाई किया, कितना अमल किया, और अपनी औलाद को किन कंसर्न्स पर छोड़कर आई हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि अपनी औलाद को कितना बदल के आई हो, छोड़ दें, बदलना आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इंसानों के दिल हमारे हाथों में होते तो क्या ही बात होती, हम सबके बच्चे हमसे ज्यादा वलीउल्लाह होते। ये आपका और मेरा काम नहीं है, आपका और मेरा काम है उनके दिमागों में कॉन्स्टेंट इस्लाम की मोहब्बत पंप करते रहना। तो अल्लाह मुझसे ये पूछेगा कि अपने पीछे अपने बच्चों के लिए क्या कंसर्न छोड़कर आई हो। कहां मेरे दिन और रात अपने बच्चों के लिए लगते थे? अभी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, माएं कितना ख्याल रख रही हैं, रोजे भी हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, और जिनके बच्चे जो हैं वो ब्रेक में आ चुके हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में, जितने भी हैं, छुट्टियां हो गई ना बहुत सी जगहों पे, बच्चे आ गए हैं, कैसे माएं लाड उठा रही हैं, क्या कंसर्न है हमारे, उनकी आखिरत के लिए कितना फिक्रमंद है, उनको कब्र के अजाब से बचाने के लिए कितना फिक्रमंद है, उनको कितना अल्लाह का बंदा बनाने के लिए फिक्रमंद है। ये मेरे कंसर्न्स हैं, ये मुझे नजर आएंगे और अल्लाह मुझसे इसी का पूछेगा। अल्लाह ताला ने मुझसे और आपसे ये नहीं पूछना कि ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे के पास कितनी बड़ी डिग्री थी, किस मल्टीनेशनल में काम करता था, और क्या कॉर्पोरेट उसकी जो थी वो लेटर थी जिसके अंदर वो हर साल में 10 स्टेप आगे चला जाता था। जिस माशरे के अंदर इतनी तेजी से बेहयाई फैल रही हो वहां माए गाफिल कैसे रह सकते हैं? कोशिश जारी रखें, जितना बच्चा दूर हो उतनी आपकी कोशिश बढ़ जाए। ये क्वेश्चन बना लें, मुश्किल बहुत है। और याद रखिए, आप तरबियत कर रही हैं औलाद की, जो तरबियत करता है उसको सबर भी करना पड़ता है, और जो तरबियत करता है वो बुरा भला भी सुनता है, बनता है। जो माएं तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बार बार टोकती रहती हैं, बच्चे कहते हैं चलो दरसे कुरान आ गई, कोई बात नहीं, आप भी मुस्कुराएं, हाँ तो बेटा आप अपने जरा तमीज सलीके से बैठ जाइए सुनने के लिए दरसे कुरान। ये करना पड़ेगा, बच्चे बच्चे जा, इसलिए कि माशरे का फ्लो है, हमारे बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारे बच्चों की गुनाह या खुदा ना खासा हमारे बच्चों की गलत चीज नहीं है, तबीयतों की, ये माहौल है। आज से 20 साल 40 साल 30 साल पहले कभी आप टीवी के ऊपर नहीं देखते थे कि एक ही बेड के ऊपर मियां बीवी लेटे हुए दिखा रहे हैं। इवन मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं तो आपको बता रही हूँ जो हम अपने बहुत बचपन में माइंड योर लैंग्वेज देखा करते थे और इस तरह की जो चीजें थी, बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ मैं तो। माइंड योर लैंग्वेज तो बहुत ही पुराना है ना, मुझे याद है हम बचपन में देखते थे इस तरह की वो चीजें जो कि आपको बाहर की वेस्टर्न कल्चर से देखने को मिलती थी। एक बेड के ऊपर हस्बैंड वाइफ लेटे हुए नहीं दिखाते थे, दो सिंगल बेड लगे हुए होते थे, और अब आप देख रहे हैं। जो आपके और मेरे दिमाग का सीधा रह जाना उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम अपने बच्चों से कहें हमारे दिमाग में तो ऐसी बातें नहीं आती थी जैसी तुम्हारे दिमाग में पॉप अप करती हैं। आपके बच्चे के जहन में इसलिए ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपका बच्चा जिस माहौल में ग्रो हो रहा है वहां हर जगह फिल्थ मौजूद है। बचपन से जो उसने कार्टून देखे, बचपन से जो उसने टॉम एंड जेरी देखा, आप सोचें, 1.5 साल का बच्चा बैठा टॉम एंड जेरी देख रहा है, और टॉम एंड जेरी में भी एक कैट आती है जिसकी आई लैशेज जो है वो रुकती नहीं है, बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आती है. हाँ, और बोलती नहीं है, मगर वो बस आंखों से करती है तो हार्ट जो है वो फ्लोट करते रहते हैं आसपास, फट 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 फट. कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट. हिदायत जब भी नजर आ जाए, इट्स नेवर टू लेट. अल्लाह का शुक्र अदा करें. अब भी ना नजर आती, कब्रों में पांव लटका के बैठ जाते, और फिर एहसास होता कि ओहो, औलाद को तो अल्लाह से जोड़ा ही नहीं. इट्स नेवर टू लेट. हिदायत जब भी मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए. लेकिन हमारे बच्चों ने ये माहौल देखा है, तो बच्चों को ब्लेम ना करें. जब आप बच्चे को ब्लेम करते हैं, तब आपको गुस्सा आता है. जब आप ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा मेरा हैंडीकैप है, जिस माहौल में इसने आंख खोली. डिज्नी वर्ल्ड की मूवीज तो हमने खुद ही दिखाई और बैठ बैठ के खुद भी देखी, और बच्चे कम शौक से देखते थे जितना अम्मा शौक से देखती थी. मैं खुद बहुत शौक से देखती सब सब. और वो मैंने ग्रामर में एक स्टोरी सुनाई थी, विजिट ऑफ ऑस की, जो लव स्टोरी नहीं थी, उसमें कितनी बड़ी कहानी, उसमें दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत मौजूद थी. विजिट ऑफ ऑस देखी हुई है ना, पुरानी वाली जो हमारे टाइम की थी, अब तो उसके बाद काफी उसके वर्जन बन गए. उसमें वो जो स्केयरक्रो था, स्केयरक्रो को दिमाग चाहिए होता है, दिमाग नहीं था उसके पास, तो उसको एक विजिट मिलती है. वो विजिट उसको एक पेपर देती है, कहती जब तक ये पेपर तुम्हारे पास रहेगा तुम बहुत अकलमंद रहोगे. और वो समझता पेपर लेकर उसके पास अकल आ गई. सेम इज द केस विद आर यूथ, दोज आर गेटिंग द डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज. उनको लगता है जब तक वो कागज का डिग्री का टुकड़ा उनके हाथ में रहेगा, उनके पास बहुत अकल है. आपको क्या पता हो अम्मा, मैं पढ़ के आ रहा हूं ना, मैं पढ़ के आ रही हूं, मुझे पता है. बिल्कुल उस केयर क्रो की तरह, जिसके पास वो कागज का टुकड़ा था और वो समझता था कि विजिट के कहने पर ये कागज का टुकड़ा जब तक मेरे पास रहेगा मैं बहुत अकलमंदी के काम करूंगा. आपके बच्चे के पास दुनिया का इल्म हो, सेक्युलर इल्म हो, लेकिन वो सेक्युलर इल्म उसको खालिक से ना जोड़ सके, उसको इस्लाम की रियलिटी के करीब भी ना ले जा सके, तो वो कागज का टुकड़ा रद्दी में जाने के काबिल है. वो कागज का टुकड़ा खिलाता है, जॉब उस कागज के टुकड़े से मिलती है. हम तो यही समझते, हम कहते हैं ऑब्वियसली सीवी में जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी का डिग्री का, कैम्ब्रिज का या ऑक्सफोर्ड का वो लगा होगा पेपर, उतना जो है वो बड़े ही मल्टीनेशनल में जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो तवक्कुल किस पर हुआ, राजिक पर या डिग्री पर? या राजिक किसको समझा, रब को या डिग्री को? अपने प्रॉब्लम्स को समझने की जरूरत है. दुनिया इतनी मुश्किल नहीं बनाई थी अल्लाह ताला ने, हमने अपने पाँव पे खूब कुल्हाड़ियां मारी हुई हैं. हमारे लिए इस वक्त चीजों को समझना बहुत जरूरी है, वरना जिस बेहिसी से दुनिया इंसानियत को तबाह कर रही है, और इंसानियत खुद अपने आप को तबाह कर रही है, ऐसा ना हो कि हम और हमारे बच्चे उस तबाही की लपेट में आ जाएं. याद रखें, अगर हमने इस्लाह की कोशिश नहीं की तो फिर हम भी साथ में पिस जाएंगे. हमने इस्लाह की कोशिश करनी है ताकि हमें फर्क पड़े कि हमने किस तरह से अपने आप को बचाना है माशरे की बुराइयों से, और अपनी औलादों को बचाना है. ये सब चीजें ग्रेजुअली हुई हैं. ये होमोसेक्सुअलिटी तक दुनिया जो है ग्रेजुअली पहुंची है. जैसे मैंने आपको भी कहा ना कि मियां बीवी को एक साथ बिस्तर पर लेटा हुआ नहीं दिखाते थे, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता एक बेड पर आए, उसके बाद वो बीच में हाथ बीच पे फिर रहे हैं, हाथ पर हाथ डाल के, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को थोड़ी पता कि वो ये हस्बैंड वाइफ है, पर लड़के लड़कियां फिर रहे हैं, और उसके बाद लड़के लड़कियों के बाद अब लड़के लड़के फिर रहे हैं. आपको अपने जितने बड़े ब्रांड्स हैं इनके एडवर्टीजमेंट्स के अंदर क्या सीन नजर आता है, चार लड़के दो लड़कियां, दो लड़के तीन लड़कियां, और उसके बाद वो सब ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं. आज नया कॉन्सेप्ट आ गया ना पिछले 2-3 साल से, मेक अस इंडिपेंडेंट. जाने देना हमें अम्मा, जाने क्यों नहीं देती आप हमें क्यों कैद कर करके रखती हैं? आपको ट्रस्ट नहीं है हम पे. ये कहां से कॉन्सेप्ट आते हैं? आपका क्या ख्याल है, आपके बच्चे इतने बड़े इन्वेंटर्स हैं कि उनको नए नए आइडियाज आते रहते हैं जो आपको नहीं आए थे कभी आज तक? आपको हिम्मत हुई थी, आप 16 साल की हो, आप कहें अम्मा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बस अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही हूँ, अब मैं नारायण जा रही हूँ 15 दिन के लिए, मैं तो चली. इसलिए कि लड़कियों वाले कपड़ों में एंजॉयमेंट नहीं होता है ना, और आप अहमक भी लगते हैं लड़कियों वाले कपड़ों में. अब लड़कियों वाले कपड़े कोई वेकेशन पर पहनता है, बच्चों को क्या रोएंगे? हम पहनते हैं वेकेशंस पर लड़कियों वाले कपड़े. आंटी मैं आपके पास नहीं कर रही. आपके बच्चे के जहन में ये आइडिया कहां से आता है? मीडिया, आसपास की दुनिया डाल रही है. तो जब मीडिया इतना काम कर रहा है तो माँ कैसे इतना काम ना करें उसके जहन के ऊपर. आप मीडिया को रोक नहीं सकते, आप बच्चों को बंद नहीं कर सकते ग्रीन हाउसेस में, आप बच्चों को घरों के अंदर कैद नहीं कर सकते. वो बाहर जाएंगे और उनको यही बताना है कि बेटा टेम्पटेशंस होंगी, दिल करेगा कि तुम भी वो करो जो सब करते हैं, लेकिन जहां इस्लाम ने बाउंड्री रख दी है आपकी और मेरे पास चॉइस नहीं है. उसको इंसेंटिव दें कि जब बहुत दिल कर रहा हो और उस चीज पर इस्लाम ने मना किया हो तो बहुत अजर मिलता है, बहुत अजर मिलता है. और बच्चों को ये चीज भी सिखाएं कि अल्लाह ताला दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए हर चीज अपने वक्त पर दे देते हैं. फिर बच्चे कहते हैं दो बुढ़ापे में मिलेगा तो दिल थोड़ी करेगा. सब जवाब होते हैं बच्चों के पास. आप कहते हैं बेटा बहुत घूमने फिरने के लिए तुमको मौके मिल जाएंगे, तो फट से जवाब आता है तब तो हमारा दिल ही नहीं करेगा जाने का, हमारा तो आज दिल कर रहा है जाने का. फिर आप भी अपना जवाब सोच के रखें, इसलिए कि आपने अपने बच्चे को बचाना है. आप उसकी असल महाफिज हैं इस जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद. अल्लाह ने आपको माँ बनाया है. ये रेडिकल चेंजेस आए हैं हमारे माशरों के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, और इन रेडिकल चेंजेस की वजह से ही अननेचुरल चीजें जो हैं वो कॉमन और नॉर्मल होती जा रही हैं. अगर आप और मैं इस चीज को समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी और मेरे लिए अपनी औलाद की तरबियत करना आसान हो जाएगा. क्यों अल्लाह ताला ने सतर का मामला दिया था? आप देखें, एक सतर का मामला ही आप देख लें, अगर मर्द और औरत अपना सतर ढांपना शुरू कर दें, आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को सतर के ऊपर ले आए, तो आपका क्या ख्याल है इंसानों की ये इंटरनल टेम्पटेशंस को थोड़ा सा परसेंटेज में कमी आएगी? एक अमल है सिर्फ, मैं इस पर कोई और अमल नहीं कह रही कि आप बाहर ना जाने दें, अकेले ना जाने दें, वेकेशंस पर ना जाने दें, या आपकी अपने डिस्क्रेशन, आपकी पॉलिसी. हर माँ बाप के अपने उसूल, अपने कवायद. आपकी पॉलिसीज मुझ पर अप्लाई नहीं करेंगी, मेरी पॉलिसीज आप पर अप्लाई नहीं करेंगी. इट्स योर डिस्क्रेशन. मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है अपने सरकमस्टांसिस के हिसाब से. लेकिन अगर इस माशरे की हर औरत और हर मर्द अपने सतर की हिफाजत करनी शुरू कर दे तो इस माशरे की बहुत सी बुराइयां कम हो सकती हैं. और जब हम सतर की बात करते हैं तो अपने बच्चों को ये बात बताएंगे, बेटों को और बेटियों को, कि भाई ना महरम के साथ आप फिजिकल टच में नहीं आ सकते. खड़े हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है. घुटना घुटने से टच कर रहा है, थाई थाई से टच कर रही है, कंधों पे हाथ रख के खड़े हुए हैं, सर से सर मिलाया हुआ है, हाथ पे हाथ मार रहे हैं, कोई मतलब नो डिफरेंस. वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता इससे. आप बच्चों से पूछ, कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं. इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि इस्लाम की और रब की अहमियत खत्म हो गई. ये काम, ये अमल नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह की अहमियत वापस ना आ जाए. इस चीज को डिवेलप करें, माहौल बेहतर होना शुरू होगा. और ये कॉन्स्टेंट कोशिश है, इसलिए कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है. बहुत सख्त आजमाइश है माँ बाप की, बहुत सख्त. जितनी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को समझती हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने कंधों पर हर दिन बढ़ता हुआ महसूस होता है. इसलिए कि चैलेंजेस हर दिन बढ़ रहे हैं. लेकिन आपका और मेरा काम है कि अपनी औलादों को हम असफला साफिलीन की तरफ जाने से रोकें, खुद भी रुकें और अपनी औलादों को भी इस चीज से रोकें. इस्लामी हुकूमत होगी तो यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई कदम जरूर उठाया जाएगा. अगर कोई इंसान अपने आप को डिक्लेयर होमोसेक्सुअल बताएगा, इस्लामी हुकूमत में कदम उठाया जाएगा. फिर एक तरफ स्कॉलर्स की राय यही है कि जो मैंने आपको भी बताई कि वो कहते हैं कि इस तरह के लोगों को आप दलील से और मोहब्बत से और अल्लाह की सिफात को बताकर कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो गलत रास्ते पर हैं. उनके लिए दुआ करें और उनसे, उनको बताएं, उनसे कहें कि आप अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे उस पर डाल दे. देखें, कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो, एक कैपिटल और अल्लाह की मोहब्बत से. कोई भी इंसान हो, कैपिटल जी से लिखने वाले गॉड को मानता है. कोई भी इंसान, किसी नॉन मुस्लिम को भी आप ये कह सकती हैं जो होमोसेक्सुअल है, कि आप अल्लाह से दुआ करें, आप अपने गॉड से ये दुआ करें कि आपको सही रास्ता दिखा दे, सही डायरेक्शन दे दे. میں نہیں بتا رہی, میری مت مانے. وہ جس کو آپ اللہ مانتے ہیں, وہ جو اوپر آسمانوں پر ہے, آپ اس سے دعا مانگیں, اپنے لارڈ سے دعا مانگیں اور کہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے. یہ ایک جینیرک طریقہ ہے جس میں آپ تمام انسانوں کو ہوموسیکشوالٹی سے دور رکھنے کے لیے ایک اپنا سٹانس دے سکتے ہیں. ہاں, ان سارے سینیریوز میں اگر آپ کسی ایسے ہوموسیکشوئل کی تھیراپی کر رہے ہیں, آپ کا اپنا ایمان پر جمنا بہت ضروری ہے, آپ کا اپنا کنوکشن بہت ضروری ہے. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 168 میں لوط علیہ السلام کی یہی سنت کی ریفلیکشن نظر آتی ہے, اپنے عمل پر جمے ہوئے. سورۃ شعراء آیت نمبر 168, قال لوط علیہ السلام نے کہا, انی لعملکم من القالین, میں تم سب کی ان باتوں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. یعنی جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا عمل ہے, اور میں تم جو کہتے ہو وہ تمہاری بات, میں اپنا عمل کرنے والا ہوں. یعنی عملی طور پر مسلمان ہوموسیکشوالٹی سے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسوسیٹ کر کے رکھے, میرا کوئی کنسرن اس میں نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان کو محبت سے اور دلیل سے ڈیل کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس عمل کی فیور میں ہیں. اللہ ہمیں اس معاملے میں بیلنسڈ اپروچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ آراف کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے, جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس عمل سے روکا تو ان کی قوم نے ایگریشن شو کیا. سورۃ آراف آیت نمبر 82, وما کان جواب قومہ, ان کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا, الا سوائے یہ کہ ان قالوا, انہوں نے کہا, اخرجوہم من قریتکم, ان کو یہاں سے کیک آؤٹ کر دو, لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال دو, انہم اناس یتطہرون, بڑے اپنے آپ کو سیلف رائچیس سمجھتے ہیں, بڑا اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں, بہت اپنے آپ کو پیور سمجھتے ہیں, ان کو اس معاشرے سے نکال کر باہر پھینک دو. یہ آپ کو ہمیشہ سے ایک گناہگار انسان کا مائنڈ سیٹ, یا آپ کو ہمیشہ سے ایک متکبر انسان کا مائنڈ سیٹ, اور یا آپ کو ہمیشہ سے گناہگار سوسائٹیز کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے. جب دلیل سے بات نہیں سمجھا پاتے تو ایگریشن شو کرتے ہیں, غصے سے معاملے کو ڈیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں جن لوگوں کا غصہ بہت تیز ہوتا ہے, لوگ ان کی اصلاح کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ان کی غلطی کو پن پوائنٹ کریں گے اور یہ برسٹ کر جائیں گے. وہ برسٹ کیوں کرتے ہیں؟ سامنے والا صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں مجھ میں غصہ ہے, لیکن جب غصے اپنے غصے کی دلیل میں کچھ کہہ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ سوری بولیں, وہ ان کو بولنا نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایگریشن شو کرتے ہیں, اپنی آواز کی پچ سے سامنے والے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قوم لوط کا بھی آپ کو یہاں یہی حال نظر آ رہا ہے. جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ پچھلی قوموں میں کسی نے نہیں کیا, کسی وحی میں ایسی چیز نہیں آئی, کسی انسان نے اور جانور نے ایسا کام نہیں کیا جو تم کام کرتے ہو, تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتے, سوری بولتے, آپ کو ان کا اگریشن سورۃ آراف کی آیت میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو لوط علیہ السلام کی بتائی ہوئی اپنی لانگ ٹرم فائدے کی بات بھی نظر نہیں آئی. انسان اپنی لانگ ٹرم فائدے کی بات نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اپنے چند دن کے مزے کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ نہ رکھ دے. انسان کی جو خواہش ہوتی ہے, انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ صرف خواہش کی وجہ سے, صرف خواہش کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. جب بھی اسکالرز کہتے تھے کہ لذت کے لیے, خواہش کے لیے گناہ مت کرو, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. اور قربانی کے خوف سے نیکی کرنا مت چھوڑو, قربانی کی محنت, قربانی کی تکلیف ختم ہو جائے گی, کیا باقی رہ جائے گا؟ نیکی باقی رہ جائے گی. جی راہیلا, ابھی آئے گا انشاءاللہ, آج نہیں آئے گا تو کل انشاءاللہ آ جائے گا. تو دنیا کے چند لمحوں کے ٹیمپٹیشن کے لیے, چند گناہوں کی انجوائمنٹ کے لیے انسان اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کر لے. بعض انسان کی خواہشات اس کے لیے میٹھا زہر ہوتے ہیں, ایسا پوائزن ہوتی ہیں, ایسا سویٹ پوائزن ہوتی ہیں, جو آہستہ 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 اس کی زندگی کے سکون, انٹرنل سکون کو کھاتا ہے اور آخرت کے سارے سکون کو کھا جاتا ہے. بعض گناہ آپ کے ایسے سویٹ پوائزن ہوتے ہیں. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کا حال کیا تھا کہ جاننے کے باوجود لوط علیہ السلام کی تعلیم کے باوجود کھلم کھلا اوپنلی اس کام کو کیا کرتے تھے اور پرائیڈ کے ساتھ کرتے تھے, بالکل جیسے آج اوپن ڈسکشنز ہوتی ہیں ہومو سیکشوالٹی پر, اوپن فورمز ہیں جہاں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کو کیوں لیگلائز کرنا چاہیے. بالکل وہی ٹرینڈ آپ کو دنیا کا اس وقت نظر آ رہا ہے جو قوم لوط کا تھا کئی ہزار سال پہلے. بہت سے مسلمان جو ویسٹرن ورلڈ سے امپریس ہیں وہ بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں اسلام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے مسلمان اور بہت سے ایسے پبلک فورمز جن کے اوپر ہومو سیکشوالٹیز کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ویسٹرن کنٹریز میں, ان بورڈز میں مسلمان موجود ہوتے ہیں, ان ڈسکشن میں مسلمان موجود ہوتے ہیں. اسی لیے اب کہا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں جن کا امپریشن بہت زیادہ ہے اس ان طرف انکلائنڈ ہے, وہ کہتے ہیں اسلام کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. کیا اسلام ریفارم ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام کو ریفارم کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ایک دفعہ ایک ایجپٹ کے گورنر تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا تھا اسلام کین ناٹ بی ریفارمڈ آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فتنے اٹھتے رہے, آزمائشیں آتی رہیں, لیکن جو ریفارمیشن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے ہیں اس کے بعد اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, بالکل جیسے دین کی عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. آج کوئی نہیں کہے گا کہ ہم پانچ کی جگہ چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ لائف سٹائل بہت بزی ہو گیا ہے. یہ دین میں نہ سبٹریکشن ہوگا نہ ایڈیشن ہوگا. جب ہی آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر بدعت کا کانسیپٹ کیوں ہے اتنا سٹرونگ, آپ اپنی طرف سے عبادات کو رسول اللہ سے آگے بڑھ کر ایڈ نہیں کر سکتے, عبادت ایجاد نہیں ہو سکتی. بالکل جیسے شریعت کا حلال اور حرام, وقت کے ساتھ ساتھ حرام کو آپ حلال نہیں کر سکتے اور حلال کو آپ حرام نہیں کر سکتے, یہ ڈیفائنڈ شریعت ہے. اور ہومو سیکشوالٹی شریعت کے حلال اور حرام کے اندر آتی ہے, یہ شریعت کا حرام ہے. چاہے کتنا بھی دنیا کے اندر اس چیز کو مانا جائے, چاہے کتنے بھی اس کے لیے ڈسکشنز کھل جائیں اور ڈورز کھل جائیں, مسلمان اس راستے پر نہیں چل سکتے. لوط علیہ السلام کے لیے ہم پڑھ چکے کہ ان کا پورا علاقہ اس کام میں انوالو تھا. جب لوط علیہ السلام نے روکا تو ان کے اندر اگریشن آیا, اس کے اوپر آپ کو وہ آیت مل گئی, آیت نمبر 29 جس کو ہم کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں سورہ عنکبوت کی, کہ جب انہوں نے کہا کہ تم اس عمل کو چھوڑو جن میں تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو, تو انہوں نے اپنے لیے خود حجت تمام کی تھی. سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 میں انقالو انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. لوط جس چیز کی سزا کے لیے تم بار بار ہمیں کہتے رہتے ہو لاؤ وہ سزا لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو. انشاءاللہ کل یہیں سے اپنی بات شروع کریں گے کہ آگے اس قوم لوط کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے اس دین کے ایسنس کو ریوائیو کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں طریقہ سکھا دے کہ ہم اپنی اولادوں کو کیسے دین سے محبت کرنا سکھا سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونافعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک اناؤنسمنٹ ہے پلیز, آپ میں سے جس کا بھی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں کوئی چیز ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے, کل ہم وہ سب کو صدقہ کر دیں گے. آپ اپنے پلیز فوٹ سٹولز اور کشنز کل کلاس سے لے جائیے گا, بیکاز اس کے بعد پھر سمر بریک ہے, ہم ریسپانسبلٹیز نہیں لیں گے. آپ لوگوں کے لیے یہاں پر گفٹ موجود ہے آپ کی چھٹیوں کا, وہ لے لیجئے. اور جن کو وہ کتاب جو گفٹ کی شکل میں ہے وہ انگلش میں چاہیے ہو پلیز نادیہ سے کانٹیکٹ کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.